ओके भक्ति वृक्ष पार्ट तीन को हम शुरू कर रहे हैं, इसका भाग दो तो कोई भक्त पढ़ेंगे पढ़ना शुरू कर सकते हैं। चलिए मैं पहले शुरू कर देता हूँ। कृष्ण भगवत गीता में दो प्रकार की शक्तियों के बारे में बताते हैं, अपरा शक्ति, थोड़ा सा गेन कम कर सकते हैं, बहुत ज्यादा गेन हो रहा है मेरे पीछे बोलिएगा। भूमिरापो नलो वायु,
भूमिरापो नलो वायु,
हम मनो बुद्धि रे वचा,
हम मनो बुद्धि रे वचा,
अहंकार इति यम्मे,
अहंकार इति यम्मे,
हिन्ना प्रकृति
रष्टधा, हिन्ना प्रकृति रष्टधा।
अनुवाद, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार ये आठ प्रकार से विभक्त मेरी भिन्ना अपरा प्रकृतियां हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें समझना होगा और वो ये है कि अपरा प्रकृति या भिन्न प्रकृति का अर्थ क्या है, यानी भगवान के स्वरूप से भिन्न। और भगवान का स्वरूप है सच्चिदानंद कॉन्शियस। इसके बारे में मैंने पहले भी समझाया था कि ज्ञान शक्ति आत्मा की चेतना का लक्षण है और ज्ञान शक्ति में दो मुख्य गढ़ होते हैं। किसी को याद है, माइक पे बोल सकते हैं, याद है? फिर से मैं बोल देता हूँ, ज्ञान शक्ति में दो मुख्य गढ़ होते हैं। एक होता है ये चेतना, ये अवेयरनेस कि मैं हूं, जैसे आप लोग यहाँ पे हैं कि नहीं है, सब लोग हाथ ऐसे से कर रहे हैं, हाँ है, हाँ। मतलब ये अवेयरनेस है आपकी, और आप सब लोग ये रूम नहीं है, ये भी अवेयरनेस है। तो इसको श्रीपद रामानुजाचार्य सिखाते हैं ज्ञान शक्ति। ये जो ज्ञान शक्ति हमारे पास है ऐसे भगवान के पास भी है, या उल्टा बोलना चाहिए, जैसे भगवान के पास है वैसे हमारे पास है। तो भगवान भी जानते हैं कि वो हैं, भगवान भी जानते हैं हम हैं। अब दिक्कत ये है कि जो माइक है ये बिल्कुल नहीं जानता, ये माइक कोई एनालिसिस नहीं कर सकता है कि क्लास अच्छी हुई बुरी हुई सोसो थी, कोई भी बात नहीं बोल सकता। और ये बात बहुत विचारणीय है कि हम अपने से विजातीय वस्तुओं को इकट्ठा करके सुखी होने का प्रयास करें। समझ रहे हैं विजातीय का अर्थ? विजातीय का अर्थ ये होता है जो हमारे स्वरूप से बिल्कुल बिल्कुल भिन्न है। तो जब व्यक्ति समझ लेगा इस बात को कि वो है क्या, यानी शरीर नहीं है वो आत्मा है, तो आत्मा को संतुष्ट करने वाली शक्ति के संपर्क में आएगा। बाकी जितनी भी शक्तियां हैं वो आत्मा का संपर्क नहीं कर सकती है, आत्मा से अलग है। समझ में आ रहा है? इससे सिंपल शब्द में बोला जाता है कि जब मछली संतुष्ट होती है पानी में रहकर, वो उसके लिए हवा में मठे में शराब में रहना विजातीय वातावरण में रहना, सिंपल सी बात। इसी कारण से बहुत धनी लोग भी कितना भी धन इकट्ठा कर लें लेकिन वो संतुष्टि का अनुभव नहीं करते। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ हम पढ़ेंगे। पराशक्ति के बारे में भगवान बता रहे हैं, अपर्येमितस्त्वन्याम प्रकृतिविद्धि मे पराम, जीवभूतां महाबाहो येदं धायते
जगत्।
हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। इस संबंध में श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बताते हैं, बहुत सुंदर उदाहरण कि किसी फैक्ट्री में बहुत सारा माल होता है, कच्चा माल पक्का माल और बहुत सारी मशीनें होती हैं, लेकिन उसको चलाने वाले कौन होते हैं? मजदूर होते हैं। तो मजदूर जीवित हैं और वो उसका उस फैक्ट्री का विदोहन कर रहा है। समझ में आ रहा है? जैसे हमारे एक भक्त जो डीटी किचन में सेवा करते थे, तो किचन में बहुत सारी वस्तुएं हैं कि नहीं, तो आटा दाल चावल, तो क्या वो चेतना युक्त है? नहीं है। तो उसका उपयोग एक चेतना युक्त व्यक्ति कर रहा है, बहुत सिंपल सी बात। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात ये सीखने की है कि ये जो पूरा जगत है ये भगवान ने हमारे लिए निर्माण किया है। अभी मेरे एक छोटे से बच्ची थी, तो एक भक्त की बच्ची थी, तो उसने क्ले से कुछ बनाया था, क्ले से ऐसे चॉकलेट उसे बनाया था, और बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे हमारे डीटी का जो कुकी होता है ना वैसा दिखने में, बिल्कुल ऐसा ब्राउन ब्राउन कलर का। तो देख एक बार तो मुझे भ्रम में पड़ गया कि अरे वाकई ये क्या कुकी बना दिया इसने, क्या कोई इसने कुकी इसको दे दिया है ना, क्या चक्कर है? और फिर मैंने बाद में देखा नहीं इसको खा नहीं सकते। तो ऐसे ही पूरा जगत है जिसमें हम सोच रहे हैं कि हम सुखी हो जाएंगे, और सुखी होने का एकमात्र तरीका हमने लगा रखा हुआ है कि हम भोगता है, हम भोग करेंगे, हम कंट्रोल करेंगे, हम चीजों को प्रोप्राइटर मतलब ये वस्तुएं मेरी हैं, इस भ्रम में पड़े हुए हैं, और इस केवल वैसा ही जैसे छोटी बच्ची को क्ले के मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए दे दिया जाता है, या मिट्टी के बर्तन दे दिए जाते से वो सोचती है कि वो रोटी पका रही है या तो कुछ कर रही है, पकता कुछ भी नहीं। ये बहुत ही गंभीर बात है। तो यानी कि अपरिय मृतव, यानी इस नॉन कॉन्शियस एनर्जी, ये नॉन कॉन्शियस जो एनर्जी है इससे परे भगवान की शक्ति है, हम सब लोग जो कि इस जगत में, इस जगत पे वस्तुओं का तो विदोहन कर रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, तो इसके लिए भगवान को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। एक बात, दूसरा चीज हम इन दोनों श्लोकों को जोड़े हैं कि भिन्न, जो भिन्न प्रकृति है उन वस्तुओं को हम प्रेम करने का प्रयास कर रहे हैं, और जो अपरा शक्ति है, जो जीवात्मा है, उनको हम भोग करने का प्रयास कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? लिविंग एंटिटीज आर मेंट टू बी लव्ड एंड थिंग्स आर सपोज टू बी पोजेस्ड, सो वी आर ट्राइंग टू पोजेस पीपल एंड ट्राइंग टू लव थिंग्स। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है आजकल की मानव सभ्यता में, बहुत विचारणीय बात। वस्तुओं के प्रति लोग आसक्त हैं, अगर आसक्ति वह व्यक्तियों में होती है, हमें सुख मिलता है सेवा करके रिश्तों के द्वारा, और रिश्ते हम वस्तुओं से नहीं कर सकते हैं, ये समझना आना चाहिए। ऐसे रिश्ता हम भगवान कृष्ण से कर सकते हैं, वस्तुओं से नहीं। इसीलिए जो व्यक्ति भगवान से भौतिक मांगता है वो पूरी तरह से बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि भगवान जो सुप्रीमली कॉन्शियस हैं, सुप्रीमली अट्रैक्टिव हैं, उनको छोड़ करके वो कुछ भौतिक वस्तु मांग रहा है। खैर, ऐसे व्यक्ति भी भगवान की कृपा करते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे, ओके, आनंद कृष्ण प्रभु पढ़िए।
जीव कृष्ण, जीव कृष्ण,
अभी क्यों आ रहे? देखिए आवाज बस आ रही है।
हरे कृष्ण, जीव कृष्ण की परा, जीव कृष्ण की परा प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। भौतिक जगत में आत्मा जो परा प्रकृति है, भौतिक अपरा प्रकृति से आवृत है। इसे समझने के लिए नीचे दो उपमा दिए गए हैं।
इससे पहले कि हम उपमा को समझें, इस पहली लाइन को ही समझ लेना चाहिए कि हम लोग इस शरीर में आप अगर देख रहे हैं तो मैं आत्मा बहुत छोटी सी है, और इस शरीर जो अविद्या का जाल है, जड़ शरीर, ये बहुत ज्यादा मात्रा में है। लेकिन कितनी आश्चर्य की बात है कि छोटी सी आत्मा इतने बड़े शरीर को क्रियान्वित कर रही है। अब किस प्रकार से ढका हुआ है जरा उसको देखिए। यस,
पहला, भौतिक शरीर आध्यात्मिक शरीर के लिए वस्त्र जैसा है। वस्त्र जैसा आपका शर्ट और कोट आपके वास्तविक शरीर का आवरण है, वैसे ही यह शरीर जो कि स्थूल शरीर एवं सूक्ष्म शरीर का बना है, जो भौतिक तत्वों से बने हैं, स्थूल शरीर पृथ्वी जल वायु अग्नि एवं आकाश का बना है, और सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि और अहंकार का बना है, यही शर्ट और कोट है। इस शर्ट और कोट के अंदर में आत्मा है, सो यह आत्मा अभी इस भौतिक शरीर में बद्ध है, और इस मनुष्य जीवन में हमारा कार्य है जानवर के शरीर में जो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य शरीर में हम यह समझ सकते हैं कि हम यह शरीर नहीं है। यह शरीर, यह भौतिक शरीर एक बाह्य पिंजरा है, और क्योंकि मुझे यह शरीर मिला है, मुझे जन्म मृत्यु जरा एवं व्याधि झेलना पड़ता है।
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला चीज समझ में आना चाहिए, जैसे आप ये मेरा स्वेटर देख सकते हैं, पता नहीं ये स्वेटर है, ये बाह्य आवरण है, और इसके अंदर हमने एक कुर्ता पहन रखा हुआ है, ये आंतरिक वस्त्र है, अंतः वस्त्र कह सकते हैं। तो उसी प्रकार से हमारा स्थूल शरीर है जो हमें दिखाई पड़ता है, और हमारा सूक्ष्म शरीर है जो हमें दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन हम उसका अनुभव कर सकते हैं, और उसका अनुभव बड़ी आसानी से कर सकते हैं। किसी को पूछो तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है क्या, तो गुस्सा हो जाएगा। अब उससे पूछो क्या आप ये बुद्धि दिखा सकते हो, ये तो संभव है। सूक्ष्म का अर्थ है कि आप अपनी ग्रॉस इंद्रियों से उसको देख नहीं सकते, लेकिन उसके प्रभाव का अनुभव आप करते हो, इसीलिए इसको सूक्ष्म कहा जाता है। ठीक है, एक बात तो ये है। इसका एक बार एप्लीकेशन है कि आप किसी व्यक्ति के निंदा कर रहे हैं, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति कर रहा है, तो बेसिकली उसके शर्ट कोट पैंट का ही एनालिसिस कर रहा है। वो व्यक्ति ऐसे हैं, वो व्यक्ति ऐसे हैं, वो व्यक्ति ऐसे हैं, वस्तुतः वो ये नहीं देख रहा है कि वो आत्मा है। और ये देखना इतना आसान नहीं है, ये सात्विक ज्ञान कहा जाता है श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में मानस पत्र बोलते हैं अविभक्तम विभक्तेषु। तो देख रहे हैं कि एक आत्मा है वो सभी के अलग अलग शरीरों में अलग अलग रूप से धारण है। धारण का मतलब है अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग उसको शरीर मिला है, लेकिन आत्मा की दृष्टि से कोई अंतर नहीं। हम एक दूसरे के नकदई रूप से दोस्त या दुश्मन नहीं है, हम सब लोग भगवान के अंश हैं। और ये विजन डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तब हम लोगों की ऊपर दया कर पाएंगे, लोगों की मदद कर पाएंगे सच्चे रूप से। अन्यथा अगर हमारा आइडेंटिफिकेशन केवल शरीर और मन का रहेगा तो केवल हमारा जो दया का भावना है वो केवल शरीर और मन तक रहेगी। समझ में आ रही बात? दवा दे दो, कंबल दे दो, रोटी कपड़ा मकान दे दो, किसको देंगे? देह को, शरीर को, क्योंकि ठीक है आवश्यक है, लेकिन आत्मा के लिए भी कुछ होना चाहिए। इसलिए ये ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो इन सारी चीजों के बावजूद भी आत्मा एक के बाद एक शरीर धारण करती रहेगी और उसके जो जन्म का चक्र है वो छूटने वाला है। इसीलिए सच्चा ज्ञान देना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक पिंजरा मात्र है जिसके बारे में शायद आगे समझाया जाएगा, लेकिन आप एक बार ये भी हम इमेजिन कर सकते हैं कि हमारा जो क्या कह सकते हैं लंग्स जिसमें रहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, रिब केज, वो भी एक पिंजरे की तरह और आत्मा हृदय के स्थान में रहती है। तो हम लोग बिल्कुल शरीर में आ सकते हैं, बल्कि ये शास्त्र बड़ा अच्छा बोलते हैं, कहते हैं हमारे शरीर में 9 छेद हैं और फिर भी आत्मा बाहर नहीं निकल रही है, कितने आश्चर्य की बात। तो क्या कारण है बाहर ना निकलने का?
हम बाहर निकलना नहीं चाहते,
ये सिंपल सी बात, इसीलिए शरीर में फंसे हुए। और क्या प्रमाण है कि हम लोग पदात्मा है? इसे कहते हैं प्राइमा फेसिया एविडेंस, रंगी हाथों पकड़े जाना कि शरीर, ये शरीर आपको दिया गया है, ये दिखा रहा है कि हम भौतिक वासनाओं से युक्त हैं, इसीलिए ये शरीर प्राप्त हुआ है। तो बुद्धिमान व्यक्ति को अब इसको एग्रीवेट नहीं करना चाहिए, एग्रीवेट का मतलब है उसको और बढ़ाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जो भी इच्छाएं हैं उनको भगवान की तरफ समर्पित करके भगवान के धाम जाने का प्रयास करना चाहिए। ओके, मदन मोहन को पढ़ेंगे दूसरा पार्ट, पढ़िए। भौतिक शरीर पिंजरे के समान है और नहीं मिला,
भौतिक शरीर पिंजरे के समान है और आत्मा चिड़िया के समान। आप इस शरीर में बद्ध है और आप यह शरीर नहीं है। उदाहरण के लिए एक चिड़िया पिंजरे के अंदर हो सकती है परंतु पिंजरा चिड़िया नहीं है। मूर्ख व्यक्ति पिंजरे का ध्यान रखते हैं परंतु चिड़िया का नहीं, और चिड़िया भूखी रहती है। हम लोग आध्यात्मिक भूख का कष्ट झेल रहे हैं।
ओके, एक उदाहरण तो आप जानते हो, हम लोग प्राय दिया करते हैं कि भूखे व्यक्ति को माला पहना करके आप संतुष्ट नहीं कर सकते। और कोई उदाहरण आपको याद आ रहे हैं? अगर याद आ रहा है तो आप आके बोल सकते हैं। आत्मा को आध्यात्मिक भोजन ना देने से आत्मा असंतुष्ट रहती है, एक उदाहरण तो समझ में आ रहा है कि भूखे व्यक्ति को आप माला दे करके संतुष्ट नहीं कर सकते। और कोई उदाहरण? ओके, गति जी,
जैसे कोई व्यक्ति है वो अपना मेकअप करना चाहता है, जब वो मेकअप आईने का करे तो
उसका सुंदर उदाहरण दिए, समझ में आपको उदाहरण नहीं? अगर आपको तिलक लगाना है तो अपने रिफ्लेक्शन पे तिलक नहीं लगा सकते शीशे में, आप खुद तिलक लगाएंगे तो अपने आप रिफ्लेक्शन में आ जाएंगे। बहुत सुंदर बात है। तो इसी प्रकार से जब कृष्ण, हम सभी लोग भगवान श्री कृष्ण के ही अंश हैं, जब उनको संतुष्ट करते हैं तो अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं। बहुत सुंदर। और
इसके रेफरेंस में एक उदाहरण ये है कि अगर किसी कोई बीमार है वो केवल उसके हम कपड़े धोते हैं।
ये भी इंटरेस्टिंग है, अगर कोई व्यक्ति बीमार है उसको दवा ना दी जाए, खाली कपड़े धुल दिए जाएं तो भी बीमारी ठीक नहीं होने वाली। और कोई उदाहरण याद आ रहा है? तो एक उदाहरण बहुत स्पष्ट है, जो पिंजरे वाला उदाहरण जो हम लोग शायद भूल गए। बुढ़िया थी, उसके पास सोने का पिंजरा था, उसमें तोता था, और तोते को खाने कुछ नहीं देती थी और पिंजरे को चमकाती रहती थी। तो आप समझ सकते हैं कि तोता दुखी रहेगा। उसी प्रकार से हम कितना भी धन इकट्ठा करें, और हम बदात्माओं की डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग है कि जैसे धन आता है तुरंत सोचते हैं अब इससे मैं सुखी हो जाऊंगा। आपने कभी अपने मन को देखा है? थोड़ा सा भी धन आया, अगर किसी ब्रह्मचारी को 100 रुपए डोनेशन भी मिल जाता है तो तुरंत सोचता है अब इससे मैं सुखी हो जाऊंगा। ये सबकी प्रोग्रामिंग है, चाहे 100 रुपए से कोई संतुष्ट हो, चाहे वो 5 करोड़ से हो, जैसे ही धन आता है वो सोचता है इससे मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन और हो सकता है कि बाद में वो धन खाली बैंक में रखा रहे, कहीं पे भी रखा है, उसको खाली सेव के रखे, उपयोग में ना ला पाए। इस पहली प्रोग्रामिंग यही है कि हम सबसे खुश हो जाए, लेकिन हम ये पता नहीं कि खुशी और खुश होने का मार्ग जो है वो भगवान की भक्ति ही है। एक और उदाहरण है, जब पेट को खाना देते हैं तो सारी इंद्रियां संतुष्ट हो जाती हैं, तो जब तक कृष्ण की सेवा नहीं करेंगे तब तक आत्मा को संतुष्टि नहीं हो सकती। ये नात्मा सुप्रसिद्ध है। हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि इत्यादि का कष्ट क्यों झेलना पड़ता है, कौन जानता है? क्योंकि हम लोग भौतिक शरीर में हैं। ये भी सही उत्तर है, जब तक भौतिक शरीर में है इसलिए हमें कष्ट भोगना पड़ेगा। लेकिन ये प्रश्न थोड़ा सा अलग है, ये आपका बात सही है लेकिन प्रश्न का उद्देश्य अलग है। कहने का अर्थ ये है कि हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि मतलब क्यों बार बार लेनी पड़ रही है, बार बार क्यों भोग रहे हैं, क्या कारण है?
भौतिक इच्छाएं हैं जिससे
भौतिक इच्छाएं हैं, और भौतिक इच्छा के संग ये प्राइस टैग लगा रहता है। इस जगत में कुछ भी फ्री नहीं है, ध्यान रखना चाहिए। केवल आध्यात्मिक जगत में सब कुछ फ्री है लेकिन यहां कुछ भी फ्री नहीं है। तो इस जगत में जब भी हम भोग कर रहे हैं तो उसके संग थोड़ा सा रोग थोड़ा सा कष्ट हमेशा साथ में रहता है। तो आप सोचें कि इस जन्म में मैं ठीक से कोई कार्य नहीं कर पाया, काश ऐसा कर सकता, तो वो जो इच्छा है काश वो फिर अगले जन्म का कारण बन जाती, कांक्षति इसे कहा जाता है। और फिर अगले जन्म में हमको ऐसे जन्म लेना पड़ेगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि को भोगते हुए भोग करने का प्रयास करना पड़ेगा। तो भगवान की बहुत अतिशय कृपा होती है, जब भगवान का भजन करते हैं तो भगवान उन इच्छाओं को ही निर्मूलन कर देते हैं, सही खत्म कर देते हैं, तो दोबारा जन्म लेना पड़ता है। आत्मा के तत्व के बारे में, तत्व का अर्थ होता है सत्यता, सत्यता में आत्मा को कैसे समझा जाए। बालद्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवः सविज्ञेयः सचरन्ताय कल्पते। मैं इसको पढ़ रहा हूँ। यदि बाल के अग्र भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर इनमें से प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए तो इस तरह के प्रत्येक भाग की माप आत्मा का परिमाप है। कभी कभी लोग अहंकार में बोलते, जानते नहीं तुम कौन हो, मैं जानते नहीं कौन हो, और हाँ जानते हैं, हाँ, बाल के अग्र भाग के 10,000वें हिस्से में, तो चकित हो जाएगा, ये क्या बोलते। और ये इतना अचिंत है ना, क्योंकि हम अपने शरीर से इतनी पहचान कर लेते हैं, फिर उपाधियों से पहचान कर लेते हैं, तो बड़ा सहज रूप से बोलते रहते हैं, वस्तुतः हम कितने छोटे हैं। अब इसमें हमें दूसरी दिशा में नहीं जाना चाहिए कि हम इतने छोटे हैं तो हमारा कोई रूप नहीं है। बहुत मुश्किल बात है कि इतना छोटा हो गया तो रूप कैसे है। अद्भुत बात यह है कि जब बोला जाता है कि भगवान असीमित है तब भी हम सोच लेते हैं कि रूप नहीं, यानी हमारे हमारी चेतना के समय में जो इस समय हमारी चेतना है इनफाइनाइट स्मेल साइंस भी बोलती है, एकदम छोटा और इनफाइनाइट असीमित दोनों की ही चिंतन कर पाना इसका संभव है। ये बात मैंने आज तक कभी लेक्चर में नहीं बोली है, तो बोला ये बात कभी नहीं बोला। कितना अमेजिंग है, हम सोचते हैं कि आत्मा अणु है तो मतलब कोई रूप नहीं, और हम सोचते हैं कि भगवान विभू है असीमित है तो उससे तो कोई रूप नहीं, लेकिन दोनों ही आत्मा का भगवान का दोनों का है स्वरूप होता है। इसको भौतिक बुद्धि से ना समझ करके हमको शास्त्र के तत्व समझना चाहिए। और एक और चीज से हम समझ सकते हैं कि हम एक व्यक्ति हैं। हमने शुरुआत में ही क्लास में बताया था ज्ञान शक्ति का अर्थात अवेयरनेस, या आप हो तो एक व्यक्ति का हमेशा एक रूप होता है। इस प्रकार आत्मा के प्रत्येक कण भौतिक परमाणुओं से भी छोटा है और ऐसे असंख्य कण हैं। यह अत्यंत लघु आत्मिक स्फुलिंग भौतिक शरीर का मूल आधार है और इस आत्म स्फुलिंग का प्रभाव सारे शरीर में उसी तरह व्याप्त है जिस प्रकार किसी औषधि का प्रभाव व्याप्त रहता है। इस लाइन को समझिए, अगर आत्मा शरीर में नहीं हो तो तुरंत शरीर सड़ने लगता है, और बोल भी देते हैं तुरंत इसको लेके जाओ चिंता कर जला दीजिए, ये एक चीज है। दूसरा चीज ये है कि जैसे आप अपने हाथ को स्पर्श कीजिए तो तुरंत ही आप अनुभव करेंगे कि मेरा हाथ दूसरे हाथ का स्पर्श कर रहा है, इसे कहते हैं चेतना। जैसे कि एक बल्ब, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बल्ब एक जगह है और उसकी रोशनी पूरे रूम में व्याप्त है, हाँ, अब अद्भुत बात ये है कि आत्मा चाहे किसी ने कितने भी बड़े शरीर में हो, उसकी चेतना समान रूप से उस पूरे शरीर में व्याप्त रहती है। Make sense? हम लोग जो छोटे शरीर में थे, बच्चे के शरीर में, तब भी हमारे हर रोम रोम में हमारी चेतना व्याप्त थी। अब हमारा शरीर थोड़ा बड़ा हो गया है, तब भी वो पूरा व्याप्त है। तो आप देख रहे हैं कि आत्मा की जो शक्ति है बड़ी अद्भुत है। एक ऐसा बल्ब जो एक छोटे रूम को भी उतना ही आलोकित करे जितना कि एक विशाल हॉल को, तो क्या आश्चर्यजनक बात नहीं हो जाएगी? समझ रहे मेरी बात? तो इसी प्रकार से आपको समझ में आना चाहिए कि आत्मा स्पिरिचुअल डायमेंशन की चीज है। इसमें भौतिक लॉजिक नहीं लगा सकते कि ठीक है उदाहरण दिया जा रहा है बल्ब का, लेकिन बल्ब का पूरा उदाहरण फिट नहीं होता है आत्मा के ऊपर, क्योंकि एक छोटा बल्ब पूरे रूम को आलोकित बराबर से नहीं कर सकता है। लेकिन आत्मा चाहे ब्रह्मा जी के शरीर में हो, चाहे इंद्र के शरीर में हो, चाहे कीट के शरीर में हो, उस शरीर को पूरी तरह से आलोकित करती है, लेकिन उस शरीर के बाहर नहीं। समझ रहे मेरी बात? जैसे कि अगर मेरा हाथ इस माइक से थोड़ा दूर है तो मैं इसका स्पर्श का अनुभव नहीं कर सकता, तो मेरी चेतना जो है वो केवल मेरे शरीर तक लिमिट हो जाती है। लेकिन भगवान की चेतना सभी शरीरों में रहती है, सबके शरीर के सुख और दुख को समझते हैं। आत्मा की यह धारा सारे शरीर में चेतना के रूप में अनुभव की जाती है और यही आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। समझ में आ गया? जैसे कि अब मैं अपने जीवन का उदाहरण बता रहा हूं, मैं अपने पिताजी को अग्नि दे रहा था, अपने शरीर को, पिताजी को कहें या अपने शरीर को, तो वो जो लौ थी वो छटक करके मेरे हाथ पे आ गई, तुरंत मैंने हाथ अपना पूरा खींच लिया, लेकिन पिताजी के शरीर से कोई रिएक्शन नहीं आ रहा था, कहते बहुत जल रहा है, मुझे जलाओ या कुछ, कोई रिएक्शन। तो मैंने सामने देखा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, देखो आत्मा की वजह से हल्का सा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आग आई तो मैंने हाथ तुरंत पीछे हाथ खींच लिया, लेकिन जब शरीर से आत्मा चली जाती तो काटिए पीटिए जलाइए कुछ भी करिए कुछ भी नहीं होता। कौन पढ़ेंगे? आनंद कृष्ण प्रभु पढ़िए।
मुंडक उपनिषद में 3.1.9 सूक्ष्म परमाणविक आत्मा की और अधिक विवेचना हुई है। आत्मा आकार में अनुतुल्य है, जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। यह अनु आत्मा पांच प्रकार के प्राणों में तैर रहा है, प्राण अपान व्यान समान तथा उदान। यह हृदय के भीतर स्थित है और देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता है। जब आत्मा को पांच वायुओं के कलमश से शुद्ध कर लिया जाता है तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है।
तो ये जो स्थिति है, ये तरीका जो बताया गया है, ये है अष्टांग योग की विधि, जिसमें यम नियम ध्यान धारणा इत्यादि किया जाता है, इसके द्वारा आत्मा की शुद्धिकरण होता है। लेकिन ये मैकेनिकल प्रोसेस है और आत्मा की शुद्धि डायरेक्ट होती है हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा। भगवान पे जैसे हम ध्यान करते हैं, हरि नाम पे ध्यान करते हैं, तो अपने आप आत्मा इस मिथ्यांकार से मुक्त होने लगते हैं और इस शारीरिक चेतना दैहिक चेतना से मुक्त हो जाता है। इसीलिए जब नाम जप करता है, ये स्पेशल नाम जप का लाभ होता है कि हमारी चेतना जो कि बाह्य के बाहर बाहर भाग रही है, भोगों में भाग रही है, धीरे धीरे करके वो आंतरिक होने लगती है। अब व्यक्ति अपने आप समझ जाता है, तो उसको अलग से कोई मैकेनिकल तरीका लगाना नहीं कि अनुलोम विलोम प्राणायाम करे और उसके बाद उस ध्यान से करे वो सब समझेगा कि भगवान मतलब वो आत्मा है। इस प्रकार से ये हमारा प्रोसेस नहीं, इसलिए हम इसके बारे में तो ज्यादा जानते भी नहीं डिटेल में। लेकिन प्रभुपाद इसको बड़ा अच्छा बताते हैं कि सीधा कार्य करता है हरे कृष्ण मंत्र, जो आपके मिथ्यांकार एक्ट करेगा और मिथ्यांकार अपने आप डिसॉल्व हो जाएगा। जैसे कपिलदेव बताते हैं तीसरे स्कंद में, कोई व्यक्ति खाता है और उसकी जठराग्नि स्ट्रांग हो तो उसको और कुछ सोचने की जरूरत नहीं कि तुमने भी खा लिया है, अब हजम करने के बारे में क्या सोचा है, तुमने कुछ नहीं सोचता है कि अग्नि है, अपने आप ही सब हजम हो जाएगा। ऐसे ही हमारा सूक्ष्म शरीर डिसॉल्व हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, जब आपको नाम जब पसंद नहीं आ रहा है तो आपको पसंद नहीं आ रहा है ऐसा नहीं है, आपके सूक्ष्म शरीर में रहने वाला जो मिथ्यांकार है उसको पसंद नहीं आ रहा, और जैसे जैसे वो साफ हो जाएगा तो हम पूरा हरि नाम का अनुभव कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा टास्क है मिथ्यांकार को खत्म करना, लेकिन जितना ध्यान पूर्वक करेंगे, अच्छे से नाम जप करते रहेंगे, धीरे धीरे करके ये बड़ी धीरे नहीं कहना चाहिए, बहुत तेजी से कटने लगता है और आत्मा के गुण प्रकट होने लगते हैं। आत्मा के गुणों के बारे में चर्चा हो रही है, सच्चिदानंद। ओके, अमृत बाबू पढ़ेंगे। भगवत गीता पर श्रील प्रभुपाद का प्रवचन ऑकलैंड फरवरी में।
भौतिक जीवन क्या है और आध्यात्मिक जीवन क्या है, ये समझना ही शिक्षा है। आध्यात्मिक जीवन का अर्थ है सत चित आनंद विग्रह, ब्रह्म संहिता 5.1। सत अर्थात चित अर्थात ज्ञान से पूर्ण है और आनंद का अर्थ है परमानंद। यही हमारी नित्य स्थिति है, यही भगवान की नित्य स्थिति है। भगवान और हमारे बीच की भिन्नता यह है कि भगवान को कभी भी भौतिक शरीर धारण नहीं करना पड़ता है, परंतु हमें कभी कभी कुछ परिस्थितियों में भौतिक शरीर का आश्रय लेना पड़ता है।
जैसे आप समझ सकते हैं कि जो जेल के कैदी हैं उनको सरकारी गाड़ी में पुरुष वालों के साथ लाया जाता है, लेकिन इसका ये नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर जो कभी मान लीजिए जेल के इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं और वो भी सरकारी गाड़ी में जाते हैं, उनके साथ भी पुरुष वाले होते हैं, तो उनकी स्थिति और एक कैदी की स्थिति में बहुत अंतर है। तो इसीलिए भगवान गीता में बार बार बोलते हैं संभवा में आत्ममाया, अपनी शक्ति से भगवान इस जगत में आते हैं। आप सब लोग जानते हो परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृता, तो साधुओं का परित्राण करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए आते हैं। वो अपनी शक्ति से आते हैं, अपनी इच्छा से आते हैं और कभी भी आ सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और हम लोग किन परिस्थितियों में आते हैं, भौतिक इच्छा होने के कारण, जीव भोग वांछा करे, कृष्ण भूल निकटस्थ माया तारे पड़ जाते हैं। तो भगवान कृष्ण को जैसे हम भूल जाते हैं, अपनी स्थिति को भूल जाते हैं कि हम दास हैं, तो तुरंत माया को पकड़ लेते हैं। इस कारण से हमको शरीर धारण करना पड़ता है। तो अगर व्यक्ति स्वीकार कर ले कि मैं कृष्ण का दास हूँ, कृष्ण की सेवा में लग जाए, तो फिर अब उसको और भौतिक शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा। एक्चुअली मुक्ति इतनी सिंपल है अगर हम समझ लें तो। मैं भगवान का दास हूँ, मैं कृष्ण की सेवा करूंगा, जगत की सेवा बहुत हो गई, अब नहीं करनी उसकी सेवा, जो भी सेवा करूंगा किसी की भी, तो कृष्ण के संबंध में करूंगा, बस खत्म। अब वहीं से मुक्त हो जाती है। इवन प्रभुपाद समझाते हैं कि मुक्त सेवा करो भी नहीं, खाली सेवा करने की इच्छा कर रहे हो तो भी मुक्त हो जाते। यहाँ यस्य हरेर दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त समझते। व्यक्ति जीवन मुक्त हो जाता है अगर वो कृष्ण की सेवा करने की इच्छा करता है।
किंतु अफसोस करने की कोई बात नहीं, भले ही हमने ये शरीर धारण कर लिया है, इस
हमें
से निकल भी सकते हैं और निकलने की पद्धति कृष्ण भवनामृत है।
आप एक चीज देखें, इस लाइन में बहुत इंटरेस्टिंग चीज रेजोनेट कर रही है। वो ऐसे वैद्य बोलता है ना, डायग्नोसिस करता है, तुम्हारी बीमारी तो बहुत खतरनाक है, बचपन से है, इधर परेशानी हो रही ना, शरीर में जोड़ में दर्द आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो बहुत बड़ा एनालिसिस करने के बाद बोला कोई बात नहीं, बीमार हो कोई बात नहीं, तुम इस प्रोसीजर को फॉलो करो और तुम ठीक हो जाओगे। ऐसे जब महाप्रभु बोलते हैं ना एनएच है औषधि माया नसी बारना दी, नहीं उससे पहले क्या बोलते हैं, भाजी को बोलिया ऐसे संसार भीतरे भूलिया रही तुम्हें अविद्या रे। तुमने प्रार्थना किया था माँ के गर्भ में कि तुम बाहर आओगे तो भजन करोगे, लेकिन अविद्या से ग्रसित होकर के भूल गए मेरा भजन। फिर क्या बोलते हैं एने छे औषधि माया नसी बार लागे। सेम थीम है, देखिए हरि नाम महामंत्र लगत मन, ठीक है कोई बात नहीं भूल के, अब मैं तुमको याद दिला रहा हूँ, गुरु के रूप में फिर से आ रहा हूँ, कृपया हरे कृष्ण मंत्र जप करो और तुम ठीक हो जाओ। और औषधि का प्रभाव उसके स्वाद पे निर्भर नहीं करता है, स्वीकार करते हैं ना। तो आप कहेंगे हरि नाम मुझे भी अच्छा लग रहा तो मैं नहीं करूंगा, तो भैया इस समय तो ये औषधि है, अच्छा लगे बुरा लगे से मतलब नहीं है, और इसका प्रभाव इसके स्वाद पे निर्भर नहीं करता। इसीलिए अगर व्यक्ति करता रहेगा तो फिर अपने आप स्वाद उत्पन्न लग जाएगा। जितनी मात्रा में मिथ्यांकार गया उतनी मात्रा में आपको नाम रुचि प्राप्त हो जाएगी। ओके,
यही विज्ञान है। कृष्ण भवनामृत आंदोलन में हम सभी को यही शिक्षा देते हैं कि इस तरह जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चंगुल से मुक्त हो सकते हैं।
एक आप चीज ध्यान रखेंगे, इसमें लिखा है सभी को अर्थ बच्चे को, माता जी को, प्रभु जी को, IIT पास आउट्स को और जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं उन सबको ये शिक्षा आप जरूर दे सकते हो कि हरे कृष्ण मंत्र जप करो, क्योंकि दवा ज्ञान पर निर्भर नहीं करती। ये बात ध्यान रखिएगा। जो वैद्य आता है, मान लीजिए किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को कैंसर हो, चाहे बिल्कुल अनपढ़ कैंसर हो, वो दवा जब दी जाती है तो दवा कार्य करती है, अगर वो व्यक्ति दवा को ले रहा है। ऐसे ही कोई अनपढ़ व्यक्ति भी हरिनाम जब कर रहा है तो एक दिन अपने आप स्वरूप को समय वो प्राप्त कर लेगा। इसको भगवान गीता में बोलते हैं मृत्यु श्रुति परायणा। लोगों शास्त्र पता नहीं है, सुनते हैं और भगवान का भजन करने लगते हैं और भगवान के नाम चले जाते हैं। इट्स दैट सिंपल। और इस बात को गीता में भगवान बोलते हैं स्त्रियो वैश्यस्त तथा शूद्रस्तेपि यान्ति परां गतिम्। स्त्री हमारे ज्यादा बुद्धि नहीं है, बहुत आसक्त है घर परिवार में भी है, और वैश्य है जिनकी बुद्धि बहुत बिजनेस में लगी रहती है, शूद्र है जो समझ में नहीं आता, लेकिन वो भी अगर भगवान कृष्ण के शरण लेते हैं तो मुक्त हो जाते हैं। अब कोई इसको सोचेगा हम किसी को हीन कह रहे हैं, भगवान किसी को हीन कह रहे हैं, नहीं, ये अलग अलग सिचुएशन है, आत्मा ऊपर नीचे नहीं है, लेकिन अलग अलग कर्मों के अनुसार व्यक्ति की सिचुएशन से, लेकिन वो भी अगर भगवान के शरण लेते हैं तो भगवान के चरणधाम चले जाए। तो यहाँ पे रुकेंगे और पाठ चार को हम लोग कल शुरू करने का प्रयास करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय।